का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी प्रेम या वासना। अवंतिका को लेडी डॉक्टर ने उसकी मां की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, अवंतिका, तुम्हारी मां के पेट में रसोली है, जिसकी वजह से ही उन्हें पेट में दर्द रहता है। जल्दी ही यदि इनका ऑपरेशन ना किया गया तो ये कैंसर का रूप धारण कर सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर अवंतिका एक बार तो बहुत घबरा गई, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहिबा, ये रसोली किस वजह से बन गई है और ऑपरेशन के लिए कब का समय ठीक रहेगा? लेडी डॉक्टर ने अवंतिका की बात के जवाब में कहा, देखो, रसोली होना भारतीय महिलाओं में काफी आम है। वैसे तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, पर समय से इसका इलाज करवाना जरूरी होता है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय में एकत्रित खून कई बार पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही इकट्ठा होता रहता है और फिर रसोली का रूप धारण कर लेता है। यह सब अंदरूनी कमजोरी की वजह से होता है। रसोली जब बड़ी होती जाती है तो इसे ऑपरेशन से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। भारतीय औरतें खुद तो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह रहती ही हैं और औरत के स्वास्थ्य को लेकर आदमी भी कई बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। औरत एक मां है, इसलिए दोनों पति पत्नी की बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि भावी पीढ़ी स्वस्थ रह सके। ऑपरेशन के लिए तुम आज शाम को अपनी मां को दाखिल करवा दो और ऑपरेशन हम सुबह 7 बजे करेंगे। बाकी की सारी जानकारी तुम्हें काउंटर से मिल जाएगी। अवंतिका घर में बड़ी थी और कोई भाई ना होने के कारण पिताजी के साथ हर छोटे मोटे बाहर के कामों में हाथ बटाती आई थी। जब फोन पर अवंतिका की बहन अंकिता ने मां की तकलीफ के बारे में बताया तो उसे रहा नहीं गया और अगली ही सुबह अपनी 5 वर्ष की बेटी को अपने पति प्रभाकर के पास छोड़कर वो मायके चली आई थी। प्रभाकर भी बहुत समझदार इंसान था और उसने अवंतिका के मन की हालत समझते हुए कहा था, वहां तुम अपनी मां को संभालोगी या फिर मेघा को, इसलिए अच्छा होगा अगर इसे यहां मेरे पास छोड़ जाओ और जरूरत समझोगी तो मुझे फोन कर देना, मैं भी वहां आ जाऊंगा। प्रभाकर की बातें सुनकर अवंतिका को बहुत तसल्ली मिली थी। अवंतिका ने प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी मां को ऑपरेशन के लिए दाखिल करवाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की और अपनी बहन अंकिता को वहां छोड़कर जरूरी काम निपटाने के लिए बाजार चली गई। उसकी मां ने उसे रोकते हुए कहा भी था, अवंतिका, तुम अकेली क्या कुछ करती रहोगी? अंकिता को भी तो बाहर के कामों की जिम्मेवारी उठाने दिया करो। अवंतिका कहने लगी, नहीं मां, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी और वैसे भी तुम्हारे पास बैठने को भी तो कोई होना चाहिए और मैं बाजार से सामान लेकर घर से होते हुए रात तक आ जाऊंगी। नहीं अवंतिका, अब तुम रात को मत आना, घर पर ही पिताजी के पास रुक जाना, अंकिता तो है ही मेरे पास, तुम सुबह आ जाना। तुम भी थक गई होंगी जब से आई हो, बस भाग दौड़ में लगी हुई हो, इसलिए तुम घर पर आराम करना। अवंतिका अपनी मां से कहने लगी, नहीं मां, रात को मैं ही तुम्हारे पास रुकूंगी। अगर किसी चीज की अचानक जरूरत पड़ी तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी और अंकिता घर पर पिताजी के पास चली जाएगी। यह कहते हुए अवंतिका बाहर निकल गई। अवंतिका जब घर का सामान खरीद रही थी तो अचानक उसकी निगाह नरेन पर पड़ी। वो कुछ घबरा सी गई, पर उसे वह अनदेखा कर सामान खरीदने में व्यस्त रही। जैसे ही वह बिल देकर दुकान से बाहर निकल रही थी तो नरेन पहले से ही बाहर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका ही इंतजार कर रहा था। वह ऊपर देखे बिना एक तरफ से तेजी से निकलने लगी तो नरेन बिल्कुल उसके सामने आ गया। अवंतिका एक बार तो बिल्कुल झेप सी गई कि क्या करे। वह सामने आकर कहने लगा, क्या बात है अवंतिका, बात नहीं करोगे मुझसे? कैसी हो और आजकल कहां पर हो? अवंतिका उसकी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहती थी, पर नरेन तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गया, मानो वो पहले से ही सोच कर आया था। वह बार बार उससे आग्रह करने लगा। आखिर अवंतिका को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। नरेन, प्लीज मुझे परेशान मत करो और तुम मुझसे कोई भी बात नहीं करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, खामखा तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं। मुझे पता है अवंतिका कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और क्यों ना करो, पर इंसानियत के नाते ही क्या मुझे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दोगी? प्लीज अवंतिका, मुझे एक मौका दे दो, वरना मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। अवंतिका अब थोड़ा नर्म पड़ गई थी। नरेन, मेरी मां का कल ऑपरेशन है, इसलिए मैं काफी व्यस्त हूं। अवंतिका, मैं तुम्हारे सिर्फ 10 मिनट लूंगा और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मां से मिलने चलूंगा और तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पता नहीं फिर अवंतिका चाहकर भी नरेन का कहा टाल नहीं सकी। चलो अवंतिका, वहां पास में ही पार्क है, वहां चलकर बैठते हैं। अवंतिका नरेन से पहली बार उनकी कॉलोनी के एक प्रोग्राम में मिली थी। नरेन वहां पर राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय था। वह उनकी कॉलोनी में होने वाले आजादी के दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान शामिल होने आया था। अवंतिका शुरू से ही इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। बचपन से ही उसे नाचने का बहुत शौक था। छोटी छोटी लड़कियों के प्रोग्राम तैयार करवाना और उन्हें सजाना सवारना उसे बहुत पसंद था। नरेन उस क्षेत्र का जाना माना नाम था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी काबिलियत के दम पर काफी सफलता हासिल कर ली थी। क्षेत्रीय चुनावों में तो हर बार उसकी जीत का परचम लहराता था। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी काफी घनिष्ठता थी। अवंतिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वहीं पर एक बैंक की क्रेडिट कार्ड की शाखा में लग गई थी। अवंतिका और नरेन इस तरह के कई कार्यक्रमों में एक दूसरे को अक्सर मिलते रहते थे। नरेन एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान था। अवंतिका के मन में उसे देखकर एक अजीब सी कशिश पैदा होती थी, परंतु घर की जिम्मेवारियों के चलते उसने अपने सामने भी अपनी भावनाओं को कभी उजागर होने का मौका नहीं दिया था। नरेन के लिए उसके मन में जो भी भावना उठती वह उसे भीतर ही दबा देती। उधर नरेन ने भी कभी औपचारिक बातों के अलावा अवंतिका से कोई और बात करने की कभी कोई कोशिश नहीं की थी। बेशक वे एक दूसरे से कभी खास बात नहीं करते थे, पर दोनों की नजरें एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते हर बार आपस में जरूर टकरा जाती थीं। एक बार एक प्रोग्राम के बाद अवंतिका ने अपने बैंक के काम के सिलसिले में नरेन से उसका फोन नंबर मांगा और कहने लगी कि वह ऑफिस से उसे फोन करेगी। मार्च का महीना लगभग आधा बीत चुका था। अवंतिका को अपना विदित टारगेट पूरा करना था, इसलिए उसने सोचा कि नरेन की तो काफी जान पहचान है, तो क्यों ना उससे ही मदद ले ली जाए। अवंतिका नरेन से फोन पर बात करते हुए काफी झेंप रही थी कि नरेन पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगा। फिर भी उसने हिम्मत करके उसे फोन किया और अपने क्रेडिट कार्ड के टारगेट के बारे में बताया। तब नरेन झट से आगे से बोला, अवंतिका, मुझे तुम्हारे ऑफिस के पास ही कुछ देर में किसी जरूरी काम से आना है। तुम अपने ऑफिस का पूरा पता बता दो, मैं समय निकालकर तुमसे मिलने आता हूं। इस तरह नरेन ने उसके काम में ना सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि जब भी समय मिलता वह उसके ऑफिस उससे मिलने पहुंच जाता। अवंतिका के मन में नरेन के लिए खास जगह बन चुकी थी। वह इतने रुतबे वाला होने के बावजूद भी बहुत ही साधारण तरीके से रहता था। कभी भी उसने और लोगों की तरह कोई फालतू या बेहुदा बात नहीं की थी। एक बार अवंतिका ने जब कुछ पूछने के लिए नरेन को फोन किया तो वह कहने लगा, अवंतिका, तुम्हारे ऑफिस में बहुत भीड़ रहती है और सब लोग अजीब तरीके से देखने लगते हैं, इसलिए अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आज कहीं बाहर बैठकर कॉफी पीते हैं। तुम्हारे ऑफिस के पास ही एक महफिल रेस्टोरेंट है, क्यों ना वहां चलकर बैठें? अगर तुम ठीक समझो तभी। अवंतिका उसका कहना ना टाल सकी और उसने हामी भर दी। जब अवंतिका वहां पहुंची तो देखा नरेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जब दोनों बैठे तो बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे बीत गए। अवंतिका को अपने ऑफिस में कुछ देर का काम था, सो मजबूरन उसे वहां से ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। उस दिन के बाद तो जैसे दोनों अपने आप को रोक ना पाए और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। अगली बार तो नरेन अपनी नई कार में अवंतिका को खुद उसके ऑफिस लेने के लिए पहुंच गया। अवंतिका ने नरेन को खुद कभी कार चलाते हुए नहीं देखा था। उसके पास हर समय सरकारी गाड़ी और ड्राइवर रहते थे। अवंतिका इससे पहले कभी किसी के साथ इस तरह गाड़ी में बैठी भी नहीं थी। नरेन अवंतिका के गाड़ी में बैठते ही कहने लगा, अवंतिका, आज बहुत समय बाद सिर्फ तुम्हारी खातिर कार चलाई है और ड्राइवर को बहाना बनाकर छोड़कर आया हूं। दोनों कुछ दूरी पर ही एक पार्क में चलकर बैठ गए। नरेन ने अपना फोन वहां कार में ही छोड़ दिया क्योंकि वह अक्सर फोन पर बहुत व्यस्त रहता था। वे दोनों एक कोने में घने पेड़ों के नीचे हरी घास में चलकर बैठ गए। कुछ देर तो दोनों प्राकृतिक माहौल में अपने विचारों के साथ तालमेल बिठाते हुए खामोश बैठे रहे। अवंतिका तो बहुत असहज महसूस कर रही थी। फिर नरेन ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अवंतिका क्या सोच रही हो, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम मुझे पहले दिन से ही बहुत अच्छी लगती थी पर कभी कह नहीं सका। सोचा ना जाने तुम क्या सोच बैठो। एक तो राजनीति के कारण मैं काफी व्यस्त रहता हूं, चाहकर भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। अवंतिका, हरा रंग तुम पर कितना खिल रहा है, तुम वाकई कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे लंबे घने बाल, सिर से पैर तक तुम खूबसूरती की मूरत हो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूं। अवंतिका नरेन की बातें सुनकर मन ही मन सिमट रही थी और जैसे उसकी जुबान को ताला लग गया हो। वह शर्म से लाल हो रही थी और उसकी सांस इतनी तेज चल रही थी कि उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक नरेन ने अवंतिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया तो उसकी सांस तेज चलते चलते जैसे एकदम से थम गई हो। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि नरेन ने धीरे धीरे उसके पास सरकते सरकते उसके गालों को चूम लिया। अवंतिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नदी की तरह वो बहती जा रही है। फिर अचानक उसके दिमाग में हरकत सी हुई तो उसने खुद को संभाला और इस डर से कि कहीं वो खो ना जाए, वह एकदम से उठ खड़ी हुई, यह कहते हुए, नरेन बस अब चलते हैं, काफी देर हो गई है, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी प्रेम या वासना का पहला भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।